हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 17, 18 एंड 19। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। किरातहूणा द्रपुलिन्दपुल्कषा, आभीरशुम्भा यवनाखसादय, येनी च पापा यदपाशयाशया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। वंशी विभूषितकरा, नवनीरधाभा, पीताम्भरधरुणबिम्बफल धरोष्ठात्, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात्, हरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधू, वर्गेनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न पर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जाया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है शुद्ध भक्ति सेवा हृदय परिवर्तन। आज शौनक आदि मुनिगण अत्यंत ही सुंदर रीति से इस भौतिक जगत में जीवन के वास्तविक लक्ष्य के विषय में और जो इस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं उन लोगों के विषय में बहुत ही सुंदर रीति से वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि ये भौतिक जगत में हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है वो केवल और केवल भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। वो बहुत मूर्ख हैं जो इस संसार में भगवान की भक्ति को छोड़कर दूसरे कामों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं कर रहे हैं, जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल अपने इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उनकी आयु किस प्रकार से क्षीण हो रही है और वो किस तरह से अपने जीवन को जीवन की हानि कर रहे हैं उसके विषय में वे कहते हैं श्लोक नंबर 17।
आयुर्हरति वैपुंसं उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोकवार्तया। आयुर्हरति वैपुंसं उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोकवार्तया। आयुर्हरति वैपुंसं उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोकवार्तया।
अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, उद्यन्नस्तम च यन्नसौ, उद्यन मना उदय होता है, अस्तम यानी कि अस्त होता है, यन्नसौ सूर्य, जैसे सुबह को सूर्य उदय हो रहा है और शाम को सूर्य अस्त हो रहा है, वो रोज का रोज सूर्य क्या कर रहा है, आयुर्हरति वैपुंसं, मनुष्य की आयु को क्षीण कर रहा है। हम ऐसे बोलते हैं ना, सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वास्तव में ये मनुष्य जीवन इस तरह से जाया करने के लिए नहीं मिला है। समय बहुत मूल्यवान है। ये समय ऐसा है जिसको जिसको यदि हम जिसका सदुपयोग करें तो इस समय के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये भगवान का नाम लिए बगैर, भगवान की कथाओं के श्रवण किए बगैर जिस तरह से आयु हमारी क्षीण हो रही है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। जीव का सबसे बड़ी हानि यही है कि वो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय ये नहीं सोचेगा कि आज तो इसने 16 माला नहीं की है तो आज रात नहीं बीतेगी, सूर्य अस्त नहीं होगा, दिन शुरू होगा, शाम होगी, समय समाप्त होगा, हो जाएगा और हमारा इसी तरह से नुकसान होता आ रहा है, होता रहेगा यदि हम सीरियस नहीं होंगे, यदि हम भगवान की कथाओं को ध्यान से श्रवण नहीं करेंगे, यदि नाम जप करने के लिए हम हृदय से अपने आप को प्रेरणा नहीं देंगे। ये माया तो हर समय हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। ये माया का काम ये है ये कि वो किस तरह से हमें भगवान नाम से दूर हटा के भौतिक वस्तुओं को प्रदान करते करते हमें भगवान के, कभी हम सोचते हैं आज तो ना हमारे घर पे मेहमान आने वाले तो फिर मैं आज जब छोड़ दो, आज और काम करती हूँ, आज तो हमें किधर घूमने के लिए जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, तो आज कथा छोड़ दो, आज हम ये वाला काम करते हैं। ये पता है कैसे है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके पास अगर आपकी बहुत बड़ी कोई कीमती चीज उसने ले ली हो, आपका मोबाइल ले लिया हो और फिर वो आपको वापिस नहीं दे रहा हो, आप उसको 5 रुपए की टॉफी लेकर या चॉकलेट लेकर उसको दे दो कि बेटा ये आप ले लो और ये मोबाइल मुझे दे दो, तो वो क्या करेगा? हंसी खुशी दे देगा। उसी तरह से माया आपके साथ खेल रही है। माया छोटे छोटे चॉकलेट्स देकर हमसे हमारा मूल्यवान समय ले रही है और हम भी कितने बेवकूफ हैं, आनंदित होकर आनंद से उसको अपना समय दे रहे हैं। लेकिन हमें अब सावधान हो जाना है, माया के झांसे में नहीं आना है। कैसे भी करके ये जन्म में मुझे भगवान को प्राप्त करना है, यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए हृदय के अंदर। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब रोता है तो माँ क्या करती है, उसको कुछ खिलौना दे देती है, कुछ टॉफी देती है, यदि वो बच्चा उससे संतुष्ट हो जाता है तो माँ उसकी ओर ध्यान नहीं देती। लेकिन यदि वो बच्चा और भी रोता रहेगा तो फिर माँ जो है वो उसको उससे भी अच्छी चीज देगी कि भाई तुम ये लो, मोबाइल के साथ खेलो, टीवी देखो लो। फिर यदि वो उससे संतुष्ट हो गया तो भी माँ अपना काम करेगी, उसे उठाएगी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो बच्चा रोता रहेगा कि नहीं माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी गोद में बैठना है, तो मैया क्या करेगी? सारे काम छोड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेगी। उसी तरह भगवान, हमें भी भगवान के लिए उसी तरह से तड़पना है, उसी तरह से रोना है। भले ही कितना ही आकर्षण आए भौतिक जगत में, कितना ही हमें माया भौतिक वस्तुएं दे देकर, लालच दे देकर भगवान से दूर करने का प्रयास करती रहे, लेकिन हमें दृढ़ रहना है। पक्का माया के साथ पक्का युद्ध है कृष्ण भक्ति, और हमें इस युद्ध में जीत कर दिखाना है कि नहीं, मुझे तुम्हारा कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। मैं अपने, तुम चाहे कितना ही मुझे व्यस्त कर दो, मैं अपने नाम जप को नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे कितना ही मुझे भौतिक बहकावे में डालो, मैं अपना श्रवण कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं भागवतम श्रवण नहीं छोड़ूंगा, मैं कथा नहीं छोड़ूंगा। यदि इस तरह से दृढ़ता के साथ नाम जप और भागवत श्रवण को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? वे आगे कहते हैं, तस्यर्ते यत् क्षणोनीतः उत्तम श्लोकवार्तया। तस्य मतलब वो व्यक्ति जो भगवान की महिमा का गायन करने वाला होता है, उसके रिते मतलब उसके अलावा यत् क्षण, समय जो है नीत का मतलब है उपयोग किया हुआ, यानी सार्थक तो उसी का समय है जो भगवान की कथाओं, महिमा का गायन करने वाले लोग हैं, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करने वाले। उत्तम श्लोक का वार्ताया, उत्तम श्लोक यानी सर्वोत्तम भगवान, उनकी वार्ताया यानी उनकी वार्ताओं को, उनकी कथाओं को जो श्रवण करते हैं, तस्यर्ते क्षणोनीत, तो उनका जो समय है वो वेस्ट नहीं होता है, उनका ही समय
उपयोग होता है, समय वही सफल होता है जो भगवान की कथाओं को श्रवण करके, भगवान के पवित्र नाम को जप करके बिताया जाए। यहाँ पर साफ साफ बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रीला प्रभुपाद जी अक्सर इसको कोट करते हैं और कहते हैं आयु हरति वै पुंसाम उद्यन नस्तम चयन्नसो। सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से हर एक जीव की आयु नष्ट होती है, लेकिन तस्यर्ते यत्क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। वो व्यक्ति जो भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान की वार्ताओं को का बखान करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, उनकी आयु नष्ट नहीं होती, बल्कि वास्तव में उनका समय सफल होता है, उनको कभी भी हानि नहीं होती, क्योंकि वो अपने समय का जो बहुत ही मूल्यवान है उसका सदुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में समय का सदुपयोग क्या है कि उसे भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम के जप में लगाया जाए। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो समझो बहुत बुद्धिमान है और वो अपने समय का सदुपयोग कर रहा, उसकी आयु क्षीण नहीं होती है। तस्यर्थे यत क्षणों नहीं था, उसकी आयु क्षीण नहीं होती, मतलब अब वो जब वास्तविक अवस्था को प्राप्त कर लेगा फिर उसे कभी भी क्षीण होने वाले जन्म को नहीं लेना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो बच जाएगा अगर वो भगवान की कथाओं को श्रवण करेगा और भगवान की पवित्र नाम का जप करेगा। अनुवाद देखिए, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर इस श्लोक को समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमयी सेवा को त्वरित करके भगवान से हमारे भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। मानव जीवन की सदुपयोग क्या है? उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान जो सर्वोत्तम है उनकी चर्चा, उनकी अपने समय को उनकी कथाओं को श्रवण करने में लगाना, यही सदुपयोग है। इसीलिए तो बताया था, पहला हमें पहले ही बताया सुखदेव गोस्वामी ने, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षता भयम्। जो वास्तव में भय से बचना चाहते हैं, बारंबार जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहते हैं, अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, उन्हें भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, केवल यही सदुपयोग है अपने समय का। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कहा गया है काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतएव सूर्योदय तथा सूर्यास्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि उसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाएगा। ज्वार भाटा होता है ना, जैसे गर्मियों के टाइम पर जो समुद्र है वो बहुत बढ़ जाता है उसका पानी, और सर्दियों में पीछे चला जाता है, तो वो किसी का वेट थोड़ी करता है कि भाई इसने तो आज समुद्र में आनंद इस दफा किया ही नहीं है, तो अभी समुद्र इंतजार करेगा कि अभी हम पीछे नहीं जाएंगे, पहले सब लोग आनंद ले लें। नहीं, वो तो अपने समय पे चला ही जाएगा। उसी तरह सूर्य ये नहीं देखेगा कि पूरा दिन बीत गया और इसने तो आज माला तक नहीं पकड़ी, हरिनाम आज तक शुरू नहीं किया, पूरा दिन बीत गया, एक माला भी नहीं की, तो वह इंतजार करता हूं, भले आज 16 माला कंप्लीट कर ले फिर रात करूंगा फिर चला जाऊंगा। नहीं, वो तो चले ही जाएंगे। और इसी तरह हमारा समय व्यर्थ बीतेगा यदि उसका उपयोग भगवत नाम लेकर, भगवान की कथाओं को नहीं सुनकर करेंगे, तो वो समय बीत जाएगा और हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। समय जो बीत जाता है, आप करोड़ रुपए देकर भी उस समय को वापस नहीं ला सकते। समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीव को या मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके, और वह भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इसलिए मिला है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान, अपने आप को पहचाने कि मैं हूं कौन, अपने सुख के स्थायी स्रोत को जाने। ये भौतिक जगत का सारा सुख तो अशाश्वत है, समाप्त हो जाएगा। मैं जब शाश्वत हूँ तो फिर मुझे इन अशाश्वत वस्तुओं से भला कैसे आनंद आएगा। सुख तो जीव का स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक सफुलिंग है। जीव जो है वो भगवान का अंश है, और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतया हो पाता है। सुख कब होगा? जब वो आध्यात्मिक जीव, भगवान जो है आध्यात्मिक है, जीव भी आध्यात्मिक है, जब इन दोनों का संबंध जुड़ेगा ना, तभी सुख आएगा। भौतिक वस्तुओं में कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। भगवान पूर्ण आत्मा है, और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। तो भगवान में और भगवान के सबसे संबंधित भगवान के नाम, रूप, लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। मानव के एक बार भक्ति से सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपर्युक्त शक्तियों से में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। अगर भगवान के नाम से जुड़ जाएंगे, भगवान के स्वरूप से जुड़ जाएंगे, भगवान की कथाओं से जुड़ जाएंगे, तो फिर उसी समय जो हमारे लिए सिद्धि के द्वार यानी परम भगवान के धाम के द्वार खुल जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता 2.40 में भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायोन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोस्ते, मतलब जब भी कोई भगवान भक्ति के लिए प्रयत्न करता है तो नाशोस्ति, उसका कुछ भी नाश नहीं होता है। प्रत्यवायो, उसका कभी हिरास नहीं होता है, ना नाश होता है ना नुकसान होता है। विद्यते, कभी भी नहीं होता है। और स्वल्प माप्यस्य धर्मस्य, स्वल्प थोड़ा सा भी यदि यह भक्ति मार्ग पे जीव आगे बढ़ेगा, त्रायते महतो भयात, तो वो बहुत बड़े भय से उसकी सुरक्षा उसे सुरक्षा प्राप्त होगी। बड़ा भय क्या है? बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 2.40 में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है कि भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उभारने के लिए पर्याप्त है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के वर्ण करण कुहणों में प्रवेश करने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती हैं। वैसे तो सब जीवों को पता है कि जीवन का लक्ष्य भगवत भक्ति है, भगवत प्राप्ति है, लेकिन जब वो कथा को श्रवण करता है ना, तो जिस तरह से इंजेक्शन जैसे ही लगती है सारी रगों में उसका प्रभाव होता है, उसी तरह जैसे कथा कानों में जाती है ना, तो सारी हमारी मानसिकता पर, हमारे विचारों पर, हमारे हृदय पर, हमारे अस्तित्व पर उसका चमत्कार होने लगता है। और उस चमत्कार कथा रूपी जब शब्द हमारे कानों में जाते हैं तो फिर उसका इतना असर होता है कि हृदय में जो कृष्ण प्रेम की अग्नि बुझ गई है वो भड़कने लगती है। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है कि पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलना, फलित होना। जिस तरह से अगर एक जगह पे हम देखते हैं कि वृक्ष में एक फूल आया या एक फल आया तो मतलब अभी वो वृक्ष जो है वो फलने लगा है, उसी तरह से जब कथा हृदय में जाती है ना तो हमारे सारे पिछले कर्मों के जो बंधन है वो टूटने लगते हैं और आगे हमारी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति हो रही होती है। हृदय के अनर्थ स्वतः नाश हो रहा, मतलब हर चीज जो है वो सही तरीके से आगे प्रोग्रेस करने लगती है जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करती है। हम जो ये श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं ना, ये भगवान की असीम कृपा है कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सुखदेव गोस्वामी के इन शब्दों को समझ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि ये जब ये जो समय है ना जो हम भागवतम को श्रवण करने में लगा रहे हैं, मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करता है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को छुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव को भौतिक संदूषण का लक्ष्य है। ये बात बहुत ही समझने की है कि मृत्यु क्या है, शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। ये जो इस संसार में हम लोग आए हैं ना, तो ये कोई हमारे लिए कोई फखर की बात नहीं है कि हम इस संसार में हैं। भाव तो ये होना चाहिए कि अब इस जेल से, जेल में आ गए हैं, कैद में आ गए हैं, ये संदूषण है। मृत्यु होगी तो बंधन टूटेगा ना, तो इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। अब इस जगत में आए हैं तो जन्म भी लिया है, मृत्यु भी होगी, बूढ़े भी होंगे, बीमार भी होंगे, लेकिन जो भगवत कथा श्रवण करता है ना उसके ये सारे ताप नष्ट हो जाते हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसे भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। अभी दान जो है वो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि हर गृहस्थ को देना चाहिए। दान आपने दे दिया मतलब आपका कल्याण होना है। अब आपने किसको दिया है उसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुपात्र को दान दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। बिल्कुल, आपने दान दिया है तो अवश्य आपको वो वापस से मिलेगा। ऐसा दान यदि ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति की गई है कि जो शुद्ध ब्राह्मण है उनको देना चाहिए। यदि यह धन अब्राह्मण यानी ब्राह्मण के गुणों से हीन को दान में दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है। शास्त्र क्या कहता है, जो ब्राह्मण है उनको दान देना चाहिए, लेकिन यदि आपने किसी अब्राह्मण को भी दान दिया है तो भी जितना दिया, मना आपने एक रुपया दिया तो अगले जन्म में आपको एक रुपया वापस मिलेगा। लिखा है यहाँ पर उसी अनुपात में अगले जन्म में आपको वापस मिलेगा। लेकिन यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी यह दुगना होकर लौट आता है। पहले वो कौन था, अब्राह्मण था, लेकिन अभी अर्ध शिक्षित मतलब पूरा ब्राह्मण नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको वेद इत्यादि अध्ययन किया है, थोड़ा बहुत पालन करता है, अर्ध शिक्षित है उसको यदि दोगे तो दुगना होकर डबल होकर मिलेगा, एक का दो। और यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। पूर्ण ब्राह्मण को खोजना चाहिए किसी शुद्ध ब्राह्मण को, क्योंकि दान तभी करोड़ों गुना बढ़ जाता है, सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाता है जब किसी शुद्ध ब्राह्मण को देते हैं। लेकिन आगे पढ़िए, किंतु यदि यह धन वेद पाराग, जिसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी हो। वेदों का पद क्या है, वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विधि वचाहम्। समस्त वेदों का को जानने का मकसद केवल मुझे जानना है। वेदों का रचयिता, वेदों का संकलन करता और वेदों को जानने वाला भी केवल मैं हूँ। तो जो भगवान श्री कृष्ण को जानकर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, कृष्ण भक्त को जो यदि वैष्णव को दान दिया जाता है, किंतु यदि यही धन वेद पाराग यानी जो वैष्णव हो जाते हैं उनको दिया जाता है, तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है, फिर करोड़ों गुना होकर आपको मिलता है। इसीलिए हमेशा हृदय से इच्छा होनी चाहिए शुद्ध वैष्णवों को दान देने की, क्योंकि वो दिया हुआ दान जो है वो हमें बहुत सहायता करता है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। हम गृहस्थियों का यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ब्राह्मणों को दान देते हैं, इसलिए हमें हमेशा ब्राह्मणों को दान देने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। कहीं मंदिर में भगवान की सेवा के लिए दान चाहिए होता है, कहीं पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दान चाहिए होता है, बुक प्रिंट्स के प्रिंटिंग करने के लिए दान चाहिए होता है, प्रसाद का आयोजन करने के लिए दान होता है, क्लासेस वगैरह प्रोग्राम्स करने के लिए दान चाहिए होता है। हमारे पास जितना भी संभव हो ना, हमें दान देते रहना चाहिए। शुद्ध वैष्णवों को दान देने से बहुत लाभ होता है। तो यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी समय शुद्ध भक्तों से भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, तो उन कथाओं को श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की गारंटी है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने बताया है, तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। ये भागवत साक्षी है कि यदि भगवत भक्ति में भगवान की कथाओं में समय बीतता है तो वो समय कभी भी व्यस्त नहीं हो रहा है, वो शाश्वत जीवन प्रदान करने की गारंटी है। मत धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते जो मेरे धाम में आ जाता है दोबारा उसको कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र है कि इस जन्म में जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो फिर उसे ये सोचना चाहिए कि बस अब इस जीवन में ये जो थोड़े कष्ट हैं वो समाप्त हो जाएं, आगे तो शाश्वत जीवन है। वास्तविक अपनी स्थिति में आकर भगवान की सेवा करने का निश्चित उसको गारंटी मिल रही है। यदि वो भगवान के भक्तों का संगति कर रहा है, यदि कथाओं को श्रवण कर रहा है, यदि प्रेम के साथ भगवान और नाम अपराध से बचते हुए भगवान का नाम ले रहा है, तो शाश्वत जीवन गारंटीड है। अत्यंत ही सुंदर। लेकिन जो ऐसे अपने समय को नहीं बिताते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते हैं, तो वो जीते जी मरे हुए हैं। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन शव
समान सुप्राणी।
संत दूसरी बात कहते हैं, जिनके हृदय में भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षण नहीं होता, जिनके हृदय में भगवान के पवित्र नाम जपने की इच्छा नहीं होती है, वो जी रहा है लेकिन वास्तव में मुर्दा है। उसके जीने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि जीता हुआ सांस लेता हुआ शव है। इसी बात को यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं,
तरव किम न जीवन थी भस्त्रा किम न श्वसंयुत न खाद्यंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो परे तरव किम न जीवन थी वस्त्रा किम न श्वसन्त्युत न खाद्यन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे तरवः किम न जीवन्ति वस्त्रा किम न श्वसन्त्युत न खाद्यन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे।
कि वो जीते जी मरे हुए हैं, क्योंकि केवल जीने का मतलब ये थोड़े है कि आपकी आयु बढ़ रही है। आयु तो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तरव किम न जीवन थी। अगर आयु का बढ़ना ही जीवित रहने का संकेत है तो क्या वृक्ष की आयु बड़ी नहीं होती? करोड़ों करोड़ों ऐसे वृक्ष हैं जो कि सैकड़ों हजारों साल से वहीं के वहीं रहते हैं, बड़े होते हैं और उनकी मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बहुत बहुत वृक्षों की एग्जाम्पल्स देते हैं कि कहीं कहीं कलकत्ता में ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो 500 हजारों सालों तक भी है ना जिंदा रह रहे हैं। तो क्या केवल बड़े होते रहना इस बात की अलामत है कि आप जी रहे हो? ये वृक्ष भी तो जी रहे हैं, तो क्या उनका जीना सफल हो रहा है? उनकी भले कितनी ही सैकड़ों हजारों सालों की आयु हो, लेकिन यदि उनकी आयु के साथ कंपेयर किया जाए, चैतन्य महाप्रभु केवल 48 इयर्स की आयु थी, तो क्या वो सैकड़ों हजारों साल का जो वृक्ष है, तो क्या वो उससे महान हो क्या? जीता जी केवल जीकर अपनी आयु में उन्नति करने का मतलब नहीं होता है जीना। ये जीना जीना नहीं होता है कि बस आप बड़े होते रहो, क्योंकि बड़े तो वृक्ष भी होते हैं, लेकिन यदि वो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम को जप नहीं कर रहे हैं, तो उनका जीना तो बिल्कुल फिजूल है। तो कोई लोग यहाँ पर यह प्रश्न कर सकते हैं कि वृक्ष जी रहे हैं परंतु वृक्ष सांस थोड़े लेते हैं, हम तो मनुष्य हैं ना, हमारे जीने की दूसरी सिम्टम्स क्या है? ये हम सांस ले रहे ना, तो सांस तो कभी भी वृक्ष नहीं ले रहे हैं वृक्ष तो। हालांकि ये तो शास्त्रों ने ये पहले ही बता दिया है कि वृक्ष भी जीवित हैं, वो भी सांस ले रहे हैं, वो भी खाते हैं। ये अलग बात है कि जब हम उसको जल देते हैं, खाद देते हैं, वो अपने पैरों से खाते हैं। अब उनका खाने का स्टाइल अलग है, हम मुंह से खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, लेकिन वो वृक्ष भी सांस ले रहे हैं, वो जीवित हैं। लेकिन फिर भी लोग तो कहेंगे कि भाई वृक्ष तो नहीं सांस लेते, हम लोग तो दिखते हैं ना सांस लेते हुए। तो यहाँ पर बताया, वस्त्रा किम न श्वसन्त्युत, भस्त्रा मतलब जो कुम्हार की धोंकनी होती है ना, जब वो आग जलाता है तो उस धोंकनी से वो सांस देकर वो अग्नि को भड़काता है और फिर वो मटकियों को पकाता है, तो वो तो और भी जोर जोर से सांस लेती है। सांस लेने का मतलब नहीं होता है कि आप जी रहे हो, यूं तो सांस कुम्हार की धोंकनी भी लेती है, तो क्या वो अपने जीवन को सार्थक कर रही है? सार्थक जीवन तब तक हो नहीं सकता है जब तक कि जो लोहार की धोंकनी सांस लेती है। तो सांस जब तक जीव का सांस लेना तभी सार्थक है जब वो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करता है। वरना तो फिर भले सांस लेते रहो, एक दिन सांस लेते लेते मर जाओगे, कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारे जीने का। तो कभी बोले कोई कि ये यदि सांस भी लेती है या वृक्ष जीते भी हैं, तो भी हमारी तरह खाते पीते तो नहीं है, हमारी तरह इंद्रिय सुख तो नहीं भोगते हैं। तब यहाँ पर अत्यंत ही ज्वलंत उदाहरण दे रहे हैं पशुओं का, ठीक है, तुम भी यदि खा रहे हो और अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए मैथुन जीवन गुजार रहे हो, तो बताओ न खाद्यंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो परे। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे गांव में बहुत सारे पशु भी घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, हड्डियां खाते हुए दिखते नहीं तुमको, सुअर घूमते हैं, मल खाते हैं, वो दिखते नहीं है, वो भी तो खा रहे हैं ना। ये एक अलग बात है कि वो अपने टेस्ट के हिसाब से खा रहे हैं, तुम अपने टेस्ट के हिसाब से खा रहे हो, लेकिन केवल खाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, केवल सांस लेकर बढ़ाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। आहार निद्रा भाई मैथुन प्राप्त करके अपने जीवन को संतुष्ट बनाना और फिर इस जीवन में काम वासना को पूरा करके बच्चे पैदा करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं होता है, ये तो जानवर की योनियों में भी प्राप्त होता है। अनुवाद देखिए, क्या वृक्ष जीते नहीं है, क्या लोहार की धोंकनी सांस नहीं लेती, हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आधुनिक युग का भौतिकवादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश आध्यात्म विद्या या धर्म शास्त्र विषयक जिज्ञासा के लिए नहीं है। साइंटिस्ट इस बात को मानते नहीं है, भक्ति को, धर्म को। और आज के जो भौतिकतावादी लोग भी हैं, वो भी बोलेंगे खाओ पियो आनंद करो, क्या जरूरत है सारा दिन भगवान का नाम लेते रहते हो। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है और अधिकतम अवधि तक तथा जीने को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत करता है। उसका काम क्या है, बस जीना है, मुझे जीते रहना है। मरने वाला होगा ना, मतलब बूढ़ा हो जाएगा तो भी बोलेगा नहीं मेरे दांत वापस आने चाहिए, बाल व्हाइट हो जाएंगे तो बोलेंगे मेरे बाल काले होने चाहिए, शरीर कमजोर हो जाएगा तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और उसको भी बोलो कि अभी आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, भगवान का नाम लो कल चले जाओगे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगी ये बात, है ना। मृत्यु की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, वो सोचता है नहीं मुझे और भी जीना है। तो जीते रहने से कोई लाभ नहीं है। और भी अगर कोई कोई डॉक्टर के पास चले जाएंगे ना, मरने वाले भी होंगे तो बोलेंगे भले कितना भी खर्चा हो जाए इसको बचाना है, बच के करेगा क्या, वही कुत्ते सुअर हो जैसे पहले काम किए थे, आहार निद्रा वही करेगा ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के, किन्तु श्रीमद भागवतम आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के मिला है, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। ये जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि ये एक बार, इस बार मैंने जन्म लिया है तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि दोबारा मुझे वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना है, मुझे अपने भगवान को प्राप्त करना है, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण के धाम को प्राप्त करना है। तो ये शाश्वत जीवन में प्रवेश करने के लिए ये जीवन मिला है, आहार निद्रा के लिए नहीं मिला है। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहता है, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर ही नहीं रहती। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता है। जीव की शाश्वतता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन के विषय में जिज्ञासा अज्ञानता ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा दिया है, फलस्वरूप उनकी अनेक समस्याएं आ गई हैं, जिन्हें आधुनिकीकृत मनुष्य की विविध योजनाओं के ने द्विगुणित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और भी भड़का दिया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर जाए तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि बस हम लोग यही जीवन में मजा करने, आगे किसने देखा है, नरक स्वर्ग किसी को पता ही नहीं, जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा जिए और ज्यादा से ज्यादा अय्याशी करें, खाएं पिए मौज करें। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर वो लोग बढ़ाना चाहते हैं अपनी आयु को, उसके लिए कितना ही वो ऐसी ऐसी दवाएं खा लें, ऐसी ऐसी मेडिसिन खा लें जिससे 100 साल से भी ज्यादा उनकी उम्र हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। बढ़ने से, केवल आयु बड़ी होने से कोई फायदा नहीं होगा। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। वृक्ष के बारे में बताना, तरव किम न जीवंती, क्या वृक्षों की भी तो बड़ी बड़ी आयु होती है, क्या लाभ होता है उनको जीकर। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन के एक वृक्ष के विषय में बता रहे हैं कि वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। यह स्थान इमली तालाब कहलाता है, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। ये वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण जब रासलीला हो रही थी तो श्रीमती राधा रानी जो है वो जब कृष्ण रासलीला से चले गए थे, नजर नहीं आ रहे थे दिखाई, तो यहाँ इमली तालाब के नीचे आकर राधा रानी कृष्ण को बहुत बहुत स्मरण कर रही थी। इतना तल्लीन हो गई थी राधा रानी उनको याद करते करते, इतना रो रही थी वो, बहुत याद कर रही थी और इतना राधा रानी कृष्ण को इतना तीव्रता से स्मरण कर रही थी कि राधा रानी का जो गोरा गोरा अंग है ना, वो पूरा का पूरा कृष्णमय हो गया था, ब्लू कलर का हो गया था। और फिर जब कृष्ण वहां पर आए और राधा रानी को देखा, राधा रानी रो रही थी और वो पूरी कृष्णमय हो गई थी। राधा रानी को इस स्वरूप में देखकर कृष्ण ने राधा रानी कृष्ण के हृदय में राधे राधा रानी के लिए ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि कृष्ण पूरे राधा रानी की तरह गोल्डन हो गए थे। राधा रानी का जो स्वरूप है वो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया था। तो ये जो वृक्ष है वो उस समय से है, और चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो चैतन्य महाप्रभु भी अक्सर इसी वृक्ष के नीचे अपना जप कंप्लीट करते थे, वहीं पर बैठकर अपनी साधना करते थे। तो ये वृक्ष 5000 साल पहले जब भगवान आए थे तब से है। ये तो वृक्ष की सार्थकता है। वास्तव में वृंदावन में तो यदि वृक्ष भी बन जाए, यदि कंकर भी बन जाए, पत्थर भी बन जाए, तो भी वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये तो सार्थकता है। लेकिन यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलकत्ते के वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है जो 500 वर्षों से भी पुराना है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं, वो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष के तक ही जीवित रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष तक रहे। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उपर्युक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकराचार्य या चैतन्य महाप्रभु से अधिक महत्वपूर्ण है? बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने, यथा बोस ने, गोविंद बोस ने, यह नहीं, जगदीश चंद्र बोस ने यह पहले ही सिद्ध कर लिया है कि पौधों में भी प्राण होते हैं, अतएव श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं होता है। भागवतम का कहना है कि लोहार की जो धोंकनी होती है तेजी से सांस लेती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि धोंकनी में प्राण है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं है, क्योंकि पौधा तो ना तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और न संभोग सुख उठाता है। इसलिए उत्तर में भागवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्य के साथ रहने वाले कूकर सुकर यानी कुत्ते और सुअर नहीं खाते या विषय जीवन नहीं बिताते। न खाद्यंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो परे, वो भी तो खाते हैं, वो भी तो जिनसी जीवन काम इंद्रिय का सुख भोगते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने श्वास लेने तथा संभोग करने के पार्श्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। येषां न विद्या, जो शास्त्र का विद्या या शास्त्र की विद्या को शास्त्र के ज्ञान को नहीं लेता, न तपो जो अपने जीवन में तपस्या नहीं करता, न दानम जो दान नहीं देता, ज्ञानम न शीलम जो न ज्ञान अर्जित करता है और न ही ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, न गुणो न धर्म जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है, ते मृत्यु लोके भूविभार भूता, वो तो इस मृत्यु लोक में इस धरती पर भोज है। मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, भगवान ने उसको मनुष्य दिया, मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य बना, लेकिन फिर भी वो कार्य कौन से करता है, मृगार चरंती पशुओं जैसे कार्य करता है, आहार निद्रा मई मैथुन केवल उसी इन्हीं पशु वृत्तियों के कार्यों को एडवांस बनाना, अच्छे से अच्छे तरीके से खाना, अच्छे से अच्छे घर बनाना, अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए और अच्छे से अच्छे तरीके से संभोग करना, ये तो पशुओं वाले ही कार्य है ना। भले ही हम कितने ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो कार्य करते हो, पशु यदि वो गलियों में बैठकर कुत्तों की तरह हड्डियां या फिर सुअरों की तरह मल खाता है या उसी तरह से सड़कों पे मैथुन करके वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करता है, वही कार्य यदि हम बड़े बड़े बंगलों में मनुष्य करते हैं तो फिर उनके और कार्यों में तो कोई फर्क नहीं हुआ ना। इसीलिए उसको शास्त्र कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भिर नराणाम, वो तो पशुओं और मनुष्यों में एक समान है। फिर तो वो मनुष्य जीवन तो भगवान ने खाम खा, वो भगवान भी सोचेगा इसको खाम खा मैंने मनुष्य का जीवन दिया, इसको तो वही भौतिक कार्य ही करने थे। ये पशु, ये जो वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष भगवान तब बनाते हैं जब मनुष्य के जीवन में किसी को वस्त्र पहनने की इच्छा नहीं होती है ना, अपने शरीर को ढांपने की इच्छा नहीं होती है, वो अपने शरीर को पब्लिसिटी करना चाहता है, नुमाइश करना चाहता है, भगवान उसको खड़ा कर देते हैं, ठीक है खड़े रहो 500 साल तक 1000 साल तक इसी तरह से निर्वस्त्र, हर तरफ से निर्वस्त्र खड़े रहो, जितना नुमाइश करना है ना अपने शरीर को नुमाइश करके तुम जियो। वो कभी भी वृक्ष जो है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, धूप होती है, वर्षा होती है, वो कभी भी वस्त्र नहीं पहनते। किसी को बहुत ज्यादा फ्लाइंग करने का शौक होता है ना कि भाई मुझे ना बहुत ज्यादा एरोप्लेन में जाकर फ्लाई करने का शौक है, ठीक है भगवान कहते हैं तो तुम है ना कोई परिंदे बन जाओ, परिंदे भी तो सारा दिन उड़ते रहते हैं। जिसे को बहुत ज्यादा खाने पीने के मांसाहार करने का शौक होता है ना, भगवान बोलता है कि इस मनुष्य जीवन में तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम नहीं खा सकते हो, है ना, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, ये खाओ वो नहीं खाओ पढ़ना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स, तो तुम्हें सुअर बना दो ना कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मल खाना होगा मल जाके खा लेना। तो मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है, मनुष्य जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बना है, मनुष्य जीवन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए बना। लेकिन आज का मनुष्य वही कुत्तों जैसे कार्य करता है, कुत्तों को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, उनकी कोई पत्नी नहीं होती जिसके साथ दिल करे संभोग कर सकता है, आज का जीव भी यही चाहता है ना। तो भगवान बोलता है कि ठीक है तुमको यदि मनुष्यों की तरह शास्त्र के अनुसार नहीं जीना है तो फिर मनुष्य का जीवन भी मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, कार्य तो वही पशुओं जैसे कर रहे हो ना, तो इससे बेहतर है शरीर भी वही ले लो, फिर उसके लिए बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। यदि मनुष्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को बिताएगा, यदि भगवान की कथाओं को श्रवण करेगा, भगवान के नाम को जप करेगा, तो शाश्वत जीवन की गारंटी है कि वो दोबारा कभी भी पशु जीवन में नहीं आएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ी सी भी प्रगति उसे महाभय से बचाने की। लेकिन आज की मनुष्य सभ्यता, आज के मानव सभ्यता में लोग प्रशंसा किसकी करते हैं? जो कि कभी भी भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं करते, समस्त बुराइयों के उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी श्रवण नहीं करते, भगवान के कभी नाम को जप नहीं करते, फिर भी लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। देखो ये कितना बड़ा ज्ञानी है, ये कितना बड़ा साइंटिस्ट है, ये कितना बड़ा कंप्यूटर मास्टर है, ये कितना इसने ये प्राप्त किया है, उसके अंदर ये योग्यता भौतिक योग्यताएं जिसको दिखती है ना, जो ऐसे भौतिक पुरुषों का खाली की प्रशंसा करते है ना, उनके विषय में आज हमें गौतम बता रहा है कि जो उनकी तारीफ करता है, जो भौतिक बलि उनके अंदर कितनी बड़ी क्वालिटी होती है, भौतिक क्वालिटी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? जो भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ता है, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करने में रुचि रखता है, वास्तव में सार्थक उसका जीवन है। बाकी भले ही संसार में कितना ही धन प्राप्त कर लो, कितना ही मान प्राप्त कर लो, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, उसकी तो प्रशंसा कौन करते हैं, वो तो किनको अच्छे लगते हैं, आज उनके विषय में भी सुन लीजिए। भागवत कहता है, श्वावित्वरा होष्ट्र खरे संस्तुतः पुरुष पशु न यत् करण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज। श्वावित्वरा होष्ट्र खरे संस्तुतः पुरुष पशु न यत् करण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज। श्वावित्वरा होष्ट्र खरे संस्तुतः पुरुष पशु न यत् करण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज। श्व कहते कुत्ते को, विड वराह कहते हैं जो सूकर होता है ना, विड वराह यानी कि जो मल खाने वाला सूहर जो होता है वराह, और होष्ट्र, उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट और खरे का मतलब होता है गधा। ये चार पशुओं के नाम दिए हैं, क्यों दिए हैं? श्वविड वरा होष्ट्र खरे संस्तुता पुरुष पशु, संस्तुता मतलब वो ही उनकी प्रशंसा करते हैं जो पशुओं की तरह जीवन बिताते हैं। पशुओं की तरह जीवन मतलब केवल इस भौतिक जगत में कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा कमाऊं, कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाऊं और ऐसा ज्ञान प्राप्त करूं कि अपने इसी पशु वृत्ति को और भी एडवांस बनाऊं। ऐसे लोगों की प्रशंसा करने वालों के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि कुत्ते, सुअर और ऊंट और गधे ही ऐसे लोगों की, संस्तुतः पुरुष पशु, ऐसे पशुओं की प्रशंसा करते हैं। कैसे पशुओं की? न यत् करण पेथो पेथो न यत् करण पथो पेथो, न यत् करण जिसके कान, पथो पेता यानी पहुंचा हुआ नहीं है, जातु नाम गदाग्रज, जिसके कान के अंदर भगवान के पवित्र नाम, गदाग्रज मतलब समस्त बुराइयों के उद्धार करने वाले भगवान, एक बार यदि वो भगवान का नाम श्रवण करेगा ना, उसको नाम अच्छा लगने लगेगा, नाम को जप करेगा, भगवान की कथाओं को श्रवण करेगा ना, तभी उसका जीवन इस लायक होगा कि उसकी प्रशंसा कर ली जाए। लेकिन जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनता, जो भगवान के नाम को जप नहीं करता है, ऐसे लोगों की प्रशंसा करने वाले की तारीफ हो रही है यहाँ पर। अनुवाद देखिए, कुत्तों, सुअरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों के उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। सोच लो आज से, ऐसे लोगों की प्रशंसा करना भी अच्छा नहीं होता है। यदि मुख से तारीफ करनी है, किसी की प्रशंसा करनी है, तो भगवान के भक्तों की करनी चाहिए, जो भगवान के पवित्र नाम का सदैव जप करते रहते हैं, जो भगवान की कथाओं को सदैव श्रवण करने में रुचि रखते हैं, जो भगवान की कथाओं को प्रचार करने के लिए इतना कष्ट सहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, प्रशंसा तो उनकी करनी चाहिए। और यहाँ पर लोग आजकल देखते हैं तो उनका तो कोई नाम ही नहीं होता, जो प्रीचिंग करते हैं, जो नाम जप करते हैं, जो नाम संकीर्तन करते हैं, वो तो बेचारे साइड में ही रहेंगे। प्रशंसा किसकी होती है? यार उसने इतने लाखों कमाए, वो वाइन स्टोर चलाता है और इसने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इतना बड़ा बंगलो लिया, इतना आजकल तो उसकी बहुत ये लग पड़ी, यहाँ पर है ना इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला है, जहां पर नॉन वेजिटेरियन का इतना बड़ा बिजनेस करता है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए समय बिताते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ऐसा यदि आप कर रहे हो तो फिर आप भी, यहां पर अनुवाद देखिए, कुत्तों, सुअरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। श्रील प्रभुपाद की जय। जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशुओं से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि नो वैकेंसी, कोई स्थान नहीं है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं और इतनी सारी एजुकेशन, इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद द्वार द्वार भटक रहे होते कुत्तों के लिए, कुत्तों की तरह। जब एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते हैं तो वहां पर कोई भी आध्यात्मिक एजुकेशन उनको दिया नहीं जाता है, कोई भगवान के विषय में कुछ नहीं बताया जाता है, जीवन का लक्ष्य नहीं बताया जाता। ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय मनुष्य को पशु बनाने पर तुले हुए हैं। वो केवल और केवल यही बताते हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या है, ज्ञान प्राप्त करो, नौकरी करो और उसके बाद वही पशुओं वाले कार्य करो और भी एडवांस तरीके से, यही तो बताया जा रहा है। कहीं पर किसी स्कूल में, किसी विश्वविद्यालय में ये बताया जाता है कि थोड़ा सा समय निकालो भगवान के लिए, थोड़ा सा समय निकालो नाम जप के लिए, मनुष्य का जीवन मिला है भगवान की भक्ति करके उसको सार्थक करने के लिए, तो सुबह पहले उसके लिए समय निकालो, कहीं पर नहीं बताया जाता। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बड़ी कठोर शब्दों में बता रहे हैं कि जब वो शिक्षित हो जाते हैं तो किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर को यह कहकर धुतकार दिया जाता है कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञापूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। वो भी कुत्तों की तरह बस आज्ञा पालन करते हैं, उनको भले कैसी भी आज्ञा दी जाए, वहां पर नौकरी करने वाले को कोई भी कार्य करने के लिए दिया जाएगा, वो ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन बेचा जा रहा है तो मैं यहाँ पर कार्य कैसे कर सकता हूँ, या यहाँ पर वाइन बेचा जा रहा है तो मुझे, उससे केवल अपनी सैलरी की चिंता होती है, मुझे पैसा मिलना चाहिए उसकी बदली में भले कुत्तों की तरह कोई भी कार्य करना पड़े। जो लोग खाने के मामले में कोई विवेक नहीं बरतते और सभी प्रकार की सरी गली वस्तुएं खाते हैं वे सूकर तुल्य हैं। सूकरों को मल खाना बहुत पसंद है, इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी, यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो खाने पीने में कोई भी एहतियात नहीं बरतते हैं, विवेक नहीं है उनके पास, ये नहीं सोचते ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो वो सुअरों की तरह है। सुअर भी नहीं सोचते ना, इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते ना कभी भी कि ये चीज खानी है नहीं, जो भी है तो वो मल भी खा लेते हैं। उसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खा जाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना है, वह तो अन्न शाक फल दूध चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं जिनसे वह फल तथा शाक काट सकता है। मनुष्य को दो कुकर दांत भी दिए गए हैं, ये जो साइड के जो दांत है ना, मनुष्य को कुकर दांत यानी कुत्ते जैसे दांत भी दो दिए गए हैं, जिनसे कुछ ऐसे लोगों को थोड़ी छूट मिल सके जो किसी भी हाल में सामिश भोजन करने वाले हैं। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से उपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को उपेक्षित भोजन अर्पित भोजन के बचे कुचे अंश को ग्रहण करेंगे और भगवान पत्र पुष्प फल आदि ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्ति प्रहतम अश्नामि प्रियतात्मना। भगवान बोलते हैं जो प्रेम और श्रद्धा के साथ मुझे पत्ता फल फूल इत्यादि अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, तो वही वस्तु जो भगवान ने स्वीकार की है उसी का बच्चा को भक्त को या मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो वो जो भी खाएगा तो भुंजते थे त्वम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। श्रीमद् भगवद गीता 3.13 में बताया गया कि यदि वो अर्पण नहीं करके खाएगा तो उसको बहुत अपराध लगेगा। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी भी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए, अतएव मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है। उसे तथाकथित विटामिनियों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई इसके अंदर ये विटामिन्स हैं ये प्रोटीन्स हैं, आप लोग है ना नॉन वेजिटेरियन खाओ मीट खाओ चिकन खाओ। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि तुम लोगों को पशुओं का आहार करने के लिए नहीं बनाया गया है, जो भगवान खाते हैं केवल वही भोजन खाया जा सकता है। अतएव जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता है उसे शूकर के तुल्य बताया गया है। यहाँ बताया गया शूकर है, वो कुत्ता है और सुअर है जो फिर कुछ भी मिले तो वो खा लेता है। तो आगे बताते श्रीला प्रभुपाद जी, ऊंट एक ऐसा पशु है जो कांटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है उसकी तुलना ऊंट से की गई है। तथाकथित भोग बस सांसारिक जीवन मुझे प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं और अपना ही खून जला के मैं जब भी वो उसको बहुत आनंद आने लगता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी सर्वोत्तम लाभ लिया जाए जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी सर्वोत्तम लाभ लिया जा सकता है। हमारी जो भौतिकतावादी जीवन जो है वो कोई हमारे लिए बहुत बड़ा शाप अभिशाप है, हमारे साथ बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि हम भगवान के धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत में शरीर को प्राप्त किए, लेकिन इस बुरे से बुरे जीवन में भी इस बुरे से बुरी कंडीशन में भी हम सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विद बेड गार्बेज इस भौतिक जगत में रहकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, ये तो गोल्डन युग है, केवल नाम जप करने से कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। भौतिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। इस जगत में जितनी दफा भी हम आएंगे ना, केवल वही परिश्रम कर 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 अपने आप को पालन करना होगा। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषय जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है और इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऊंट को देख लो और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऊंट भी कांटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कांटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती है, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्य पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कांटीलापन खाते हैं, कांटीला फल खाते हैं। इसीलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों से की जाती है। भौतिक जगत में जो भी आपको आनंद मिल रहा है, चाहे खाने का, चाहे धन एकत्रित करने का, चाहे कुछ भी, वो केवल और केवल अपना ही खून चूसने के बराबर है। यहाँ तक कि यौन सुख में, काम वासना में जो आपको आनंद आ रहा है, वो भी आपके अपने शरीर के खून को सुखा कर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को जो कि भौतिक जीवन में आनंद महसूस करते हैं, ऊंट की तरह उसको बताया गया है। और पहले कहा कि श्वाविद वरा होष्ट खराए, खराए कहते हैं गधों को। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब बाकी वो लोग जो केवल इस भौतिक जगत में मेहनत कर कर के अपने जीवन को आनंद प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी वस्तुओं में संतुष्ट हो जाते हैं, वो तो और आध्यात्मिक जीवन को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, भगवान की कथाओं को नहीं सुनते, भगवान के नाम को जप नहीं करते, वे तो गधे हैं। गधा ऐसा पशु है जो सबसे बड़े मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा कठिन श्रम करता है और खुद के लिए बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला इस बोझे से, क्योंकि जो घास उसको इतने घास को प्राप्त करने के लिए इतना बोझा प्राप्त कर रहा है, वो तो उसको वैसे ही जंगल में मिल जाएगी। उसी तरह से ये मनुष्य, जिसको इतनी मेहनत के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, तो उसके साथ वो भाग्य भी लेके आया है। जिस तरह से दुख उसको घर पे आकर मिलते हैं ना, उसी तरह से आपके जीवन का सुख भी आपको मिलेगा। इतना कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो लाभ स्वतः मिल रहा है उसी से संतुष्ट होना चाहिए। एक्स्ट्रा मेहनत करके भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि दोबारा कभी भी इस तरह से गधों, कुत्तों और सुअरों की तरह जीने के लिए संसार में जन्म ना लेना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पर व्याख्या की गई है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नीचे देखिए, मनुष्य जीवन मूल्यों की प्राप्ति के लिए है। जीवन मूल्य क्या है? वास्तविक स्थिति जहां पर रहकर आत्मा को आनंद प्राप्त हो सकेगा। यह जीवन अर्थदम अर्थात मूल्य प्रदान करने वाला कहलाता है। और जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? यह है अपने घर भगवत धाम वापस जाना, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 8.15 में बताया गया है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागता। कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे इस दुखों भरे जीवन में वापस नहीं आना पड़ता है, यही परम सिद्धि सौं सिद्धिम परमाम गति, परम सिद्धि क्या है, परम गति को प्राप्त करना, मेरे धाम को प्राप्त करना। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, मनुष्य के स्वार्थ का लक्ष्य भगवत धाम वापिस जाने से का होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं ऐसा कार्य करूं कि भगवान के धाम को प्राप्त करूं। गधा अपना हित नहीं पहचानता और वह केवल दूसरों के लिए कठिन श्रम करता है। जो व्यक्ति मानव जीवन में उपलब्ध होने वाले अपने निजी हित को भूलकर केवल दूसरों के लिए ही कार्य करता है, वह गधे के समान है। ब्रह्म पुराण में कहा, अभी देखो हर कोई दूसरों के लिए जी रहा है। अगर देखा जाए मानव समाज में के ना किस तरह से पति क्या सोचता है कि मुझे पत्नी के लिए और बच्चों के लिए कमाना है, बाप क्या सोचता है मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, माँ क्या सोचती है पति के लिए बनाना है बच्चों के लिए बनाना है, और बच्चे क्या सोचते हैं अभी माँ बाप ने बोला है तो फिर हमें पढ़ना है। मतलब देखा जाए तो सबका वास्तविक सुख किस में है, क्यों भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करें, लेकिन वो सोचते हैं यदि मैंने नहीं कमाया तो इनका क्या होगा, वो बोलेंगे यदि मैंने ये नहीं किया तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, सब दूसरों के लिए जीते हैं। उसी तरह गधों की तरह, गधा भी क्या करता है, मालिक के लिए कार्य करता है, अपने बारे में नहीं सोचता। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए कि मुझे अपनी भक्ति करनी है, मुझे अपनी चैंटिंग करनी है, मुझे श्रवण करना है, मुझे इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, यूं गधों की तरह मेहनत कर करके अपने समय को समाप्त नहीं करना है। ब्रह्म वैवत पुराण में मनुष्य जीवन के विषय में बहुत ही सुंदर बताया गया है, लिखा है, आशीतिम चतुरश्चैव लक्षांस्तान जीव चातिषु ब्रह्मति पुरुषे प्राप्यं मानुषं जन्म पर्ययात् तदप्य भलतां जात तेषां आत्माभिमानिनां वराकाणां अनाश्रित्य गोविंद शरणद्वयम्। अर्थात मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर ग्रहों के देवता भी कभी कभी इस पृथ्वी पर मनुष्य देह की कामना करते हैं। ब्रह्मद्भि पुरुषे प्राप्य मनुष्य जन्म पर्ययात्, जो बड़े बड़े देवता है ना उनकी भी इच्छा होती है कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो, क्योंकि केवल मानव शरीर में ही मनुष्य भगवत धाम को सरलता से वापस जा सकता है। मनुष्य इस मानव शरीर में जब वो भगवान का नाम लेता है, कथाओं को श्रवण करता है, तो यहाँ से भगवान के धाम का रास्ता खुलता है। स्वर्ग से डायरेक्ट भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में क्या होगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक मिशन्ति, फिर मनुष्य जीवन अगर मिल गया सौभाग्य से तो कोशिश कर सकते हो वहां पर जाने की, लेकिन यदि फिर कुत्ता बन गए सुअर बन गए तो फिर न जाने कब वापिस है। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला ना उसको सार्थक करना है, इसी जन्म को सार्थक करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं यदि ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी कोई गोविंद यानी श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए सनातन संबंध को पुनः स्थापन नहीं कर पाता, वरा कारणम अनाश्रित्य गोविंद चरणम द्वयम, यदि वो नहीं कर पाता तो वह निश्चित ही मूर्ख है जिसने अपना सारा स्वार्थ भुला दिया है। यह मनुष्य देह 84 लाख योनियों के चक्कर में क्रमशः विकसित होने के बाद प्राप्त होती है और बेचारा मनुष्य अपने खुद के स्वार्थ की महत्ता को भूलकर राजनीतिक उत्थान तथा आर्थिक विकास के नेता के रूप में अन्यों के ऊपर उठाने की और अनेक भ्रामिक कार्यों में संलग्न रहता है। राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, किंतु मनुष्य को जीवन के असली उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे सारे परोपकारी कार्यों को भगवत धाम वापस जाने के उद्देश्य के साथ जोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य यह नहीं जानता वह उस गधे के तुल्य है जो दूसरों या अपने कल्याण की परवाह ना करके केवल अन्यों के लिए ही कार्य करता रहता है। अभी शिला प्रभुपाद जी गधे के विषय में बता रहे हैं कि सामान्यतः धोबी गधे को रखता है जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती है, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती मारे जाते रहने पर भी वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए लालचाता है तो गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे लगा रहता है। अतएव स्त्री के गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जाती है। जनसामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करते हैं। इस युग में मनुष्य गधे के कार्य में लगा रहता है। वह भारी बोझा उठाता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण ऐसे भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर ना केवल काम सुख के लिए अपितु अपने घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री लातियां मारती है। अतएव श्रीमद् भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश से रहित सामान्य मनुष्य को कुकरों सुकरों ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्त पूर्ण नहीं है। यानी कि कोई उनके लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं कही गई कि भाई हाँ ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भागवत हमने खाम खा बोल दिया, नहीं, ये उनके लिए बिल्कुल स्वीटेबल है। भले ही ऐसे अज्ञानी जन समूह के नेता तमाम कुकरों तथा सुकरों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हों, किंतु यह कोई सम्मान नहीं है। भागवत तो खुला घोषित करता है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकरों सुकरों के वेश में मनुष्यों का नेता हो, किंतु यदि उसे कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है, यदि उसे भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा नहीं है, यदि भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं है, तो ऐसा नेता भी पशु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या बड़ा पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी भी नहीं रखा जा सकता। अथवा दूसरे शब्दों में कुकरों सुकरों जैसा व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर हैं, जिनमें पाशविक गुणों का अनुपात अधिक है। यानी कि कुत्तों और सुअरों से भी ज्यादा बड़े हुए हैं, क्योंकि उनको और भी ज्यादा अधिक उनके अंदर पाशु वृत्ति होती है। तो यहाँ तक शिला प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर अनुवाद बताया, तात्पर्य में समझाया कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो भगवत धाम को प्राप्त करना है, और इसके अतिरिक्त जो भी आजकल जीव कर रहा है भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए जो कर रहा है, वो तो केवल पशु वृत्ति है। वो सब तो जानवरों के जीवन में भी मिल जाता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक समय जो है अपना भगवान की कथाओं को श्रवण करने में और भगवान के पवित्र नाम को जप करने में लगाना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे